समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार, पब्लिक स्पीक में मैं हूं आपके साथ फरहत नास, और आज हम इस प्रोग्राम में आयुर्वेद के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का हमारा विषय है शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आरोग्य में आयुर्वेद की भूमिका। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की चिकित्सा उपाधीक्षक डॉक्टर अलका कपूर और योग तथा आयुर्वेद विशेषज्ञ अनीता कौशिक जी। आप दोनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
नमस्कार।
और श्रोताओं, हमारी फोन लाइन खुल चुकी हैं। आप आयुर्वेदिक उपचारों से संबंधित अपने सवाल और सुझाव हमें भेज सकते हैं। नंबर है 0112371717 और 0112331444। नंबर एक बार फिर सुन लें, 0112371717 और 0112331444। आप व्हाट्सएप पर भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 9289094044 और आप #AskAIR के साथ एक्स पर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पूरे आधे घंटे जो हैं हम आपके साथ रहेंगे। किसी भी तरह के प्रश्न आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहला अलका जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि आयुर्वेदिक आहार क्या है और ये कैसे काम करता है?
नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी समाचार के सभी श्रोताओं को अपनी तरफ से अभिनंदन करना चाहती हूँ और आयुर्वेद दिवस की बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आयुर्वेदिक आहार, मैं कहूँगी आयुर्वेद तो संपूर्ण एक आपकी लाइफस्टाइल है, उसमें आहार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम वही बनते हैं जो हम खाते हैं, तो इसलिए इसमें पूरा एक सुबह से शाम तक की दिनचर्या, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पल हमारे देह में दोष वात पित्त कफ का कुछ चेंजेस होते रहते हैं
जी।
तो उसके अकॉर्डिंग किस ऋतु में, किस समय, किस दिन में, किस टाइम रात में हमें क्या खाना चाहिए, वो आहार है
जी। बिल्कुल अलका जी। और रायबरेली से रामाशंकर वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं।
जी
नमस्कार रामाशंकर जी।
मैं ये पूछना चाहता था कि मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक तो बहुत ही लाभदायक चीज है, मगर जैसे पहले व्यायामशालाएं होती थी जगह जगह, जहाँ की व्यक्ति अपने शरीर को मेंटेन करता था, आज वो सारी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। क्या पुनः ऐसी चीजें नहीं हो सकती?
अनिता जी, हम चाहेंगे कि आप इस तरह जवाब दें।
ठीक है, रमाशंकर जी नमस्कार और सभी श्रोताओं को। आज नवरात्र शुरू हुए हैं तो उनकी शुभकामनाएं, और नवरात्र का अर्थ यही है कि हमको अपनी भोजन व्यवस्था को ठीक से करना है, क्योंकि समय चेंज हो रहा है, गर्मी से सर्दी आ रही है, तो इस सब का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपने कहा कि क्या फिर से शुरू नहीं हो सकती, योग कक्षाएं चलती हैं, पार्क में चलती हैं, और बिल्कुल आपके जो ये प्रॉब्लम है कि क्या दोबारा से नहीं हो सकता, हो सकता है। और उसमें सबसे ज्यादा मानसिक तनाव के लिए आपको जो है मेडिटेशन की आवश्यकता है, ध्यान लगाने की आवश्यकता है, तो ध्यान लगाइए। नींद अच्छी होनी चाहिए, 8 घंटे की कम से कम नींद होनी चाहिए सभी की। तो ये सब चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप मानसिक तनाव से ग्रस्त नहीं होंगे, ठीक होंगे, और आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा।
जी बिल्कुल अनिता जी, जिस तरीके से आजकल हम सबकी लाइफस्टाइल हो गई है, उसमें 8 घंटे की नींद ले पाना वाकई में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि हम मेडिटेशन का सहारा लें और बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो इस तरीके से करें कि जो हमारी दिनचर्या है वो ठीक हो सके,
वो ठीक हो जाए
जी। तो अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से, अनवर बिहारी जी। अनवर जी
नमस्कार। मैडम
नमस्कार,
मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा से। मेरा प्रश्न ये है मैडम कि मुझे सांस फूलती है, तो आयुर्वेद में भी क्या इसके लिए कोई इलाज है, सांस फूलने की है कोई दवा?
बिल्कुल अनवर जी, बिल्कुल है आयुर्वेद में। सबसे पहले तो आप अपने श्वास पर नियंत्रण करें, लंबी गहरी श्वास लें, बहुत धीमी गति से श्वास लें। एक श्वास को भरने में कम से कम आपको 5 से 10 सेकंड लगने चाहिए, और उतना ही समय आपको छोड़ने में लगना चाहिए तो आपके फेफड़े मजबूत होंगे। हैं दूसरा, आप गिलोय का सेवन करें। गिलोय तो जगह जगह होती है, गिलोय का आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। 6 इंच की एक डंडी ले लें, और डंडी भी होनी चाहिए ब्राउन कलर की होनी चाहिए, ग्रीन नहीं होनी चाहिए। उसको कूट के रात को भिगो दें एक गिलास पानी में, और सुबह जब वो आधा रह जाए तो प्रतिदिन आप उसको पिएंगे तो आपकी ये समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लेकिन सांस पे बहुत ध्यान रखना है आपको, सांस लंबी गहरी लेनी है।
जी, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी अनु बिहारी जी। एक तो सबसे पहले आपका किस समय सांस फूलता है या किस वजह से सांस फूलता है उसकी एक बार जांच जरूर करा लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारण हैं अंदर कि जिसकी वजह से, जैसे चलने से है तो खून की कमी भी हो सकती है, सांस लंग्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही आपको ये है, लेकिन फिर भी इसका पूरी तरह डायग्नोज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आप ये सब चीजें, प्राणायाम तो आप शुरू कर ही सकते हैं तुरंत, गिलोय का काढ़ा भी तुरंत ले सकते हैं, बट डायग्नोज जरूर करवाइए
जी। और अब दिल्ली से गांधीनगर से धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी धर्मवीर जी नमस्कार।
नमस्कार जी, आज हमारे को तीन तीन देवियों के आकाशवाणी में बैठे दर्शन हो गए, सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि कोई व्यक्ति अगर हर तरह का नशा करता हो, उसके बाद वो छोड़ भी देता है, सब चीज छोड़ देता है, और उसके शरीर में कुछ इफेक्ट अलग अलग तरीके से होता है, जैसे डर बहने लगने लगता है, कोई उसको देख रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है, ऐसे उसकी माइंड में बातें चलती हैं, काम करने का दिल नहीं करता, इस ऐसे रोगी के लक्षण क्या कहे जाएंगे? साइकोलॉजी है या इसमें कोई आयुर्वेदिक का उपचार उसको मिल पाएगा, इसके लिए आपकी राय क्या है? धन्यवाद।
हाँ जी धर्मवीर जी, सबसे पहले तो आप बिल्कुल मस्त हो जाइए। आपने अगर वो चीजें छोड़ दी हैं तो आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, कई बार हमको साइकोलॉजिकल ऐसा हो जाता है, तो थोड़ी देर आप ना ध्यान लगाया करें। पूजा करते हैं ना तो उस समय शांत होके बैठें, और एक मेधावटी आती है आप उसको खाएंगे तो ये सब चीजों का भी आपका जो आपको लगता है कि कोई पीछा कर रहा वगैरह वगैरह जो भी फील होता है, ये हमारा साइकोलॉजिकल हो जाता है। चूंकि हमने पहले हम पी रहे थे तो हमको मस्त थे, कुछ बात नहीं। अब वो सब चीजें जो शरीर में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए आप गिलोय भी लें और मेधावटी लें, और उसके साथ साथ आप थोड़ा सा प्राणायाम करें, सांसों पे ध्यान दें। जब आप सांस लेते हैं, हम सांसें ना लेते रहते हैं ऐसे, अपने आप आ रही है जा रही है, ऐसे नहीं करना है। श्वास को लंबा शांत भाव से लीजिए, जैसे जैसे आप श्वास को लंबा गहरा लेता जाएंगे वैसे वैसे आपकी समस्या का समाधान होता चला जाएगा, और थोड़ी सी दवाई का सहारा ले सकते हैं। आयुर्वेद में मेधावटी होती है, बहुत अच्छी है मस्तिष्क के लिए पर्टिकुलरली।
जी, और अब कोल्हापुर से विजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
हाँ जी, नमस्ते जी। जी
जी नमस्कार, सवाल पूछिए।
जी मैं विजय कुमार स्वामी, गांव बसवा, तहसील चोर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
जी विजय जी,
दीदी डॉक्टर सर को नमस्ते, दीदी को भी नमस्ते।
नमस्ते
नमस्ते।
मेरा सवाल यह है, मेरा उम्र अभी 63 है जी, और मेरा दो दो दिन पेट साफ होता नहीं, इसलिए क्या मेडिसिन क्या है, क्या आयुर्वेदिक, वो पूछने का था।
विजय जी, आपका अगर दो दो दिन पेट साफ नहीं होता तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आप अपने खान पान का थोड़ा सा देखिए कि आप क्या खा रहे हैं। क्या आप मैदे की चीजें ज्यादा खा रहे हैं, फल वगैरह नहीं खा रहे हैं? क्योंकि हमारी डाइट में रफेज का होना बहुत जरूरी है, फल सब्जियां नेचुरल चीजें खाना जरूरी है। कहीं आप पैकेट का खाना तो ज्यादा नहीं खा रहे, जो हम आजकल सब करते हैं ना, पैकेट खोलो और चिप्स खा लो, नमकीन खा लो, तो आपको ये सब नहीं खाना है। उसके बाद अपना गर्म पानी पी के सुबह जाइए, रात को थोड़ा मुनक्के वाला दूध पीजिए, और अपना डाइट को कंट्रोल करिए। हम डाइट में तीन चीजें कहते हैं, अगर हम लाभदायक जो भोजन होता है और उसके साथ हम जंक फूड भी खाते हैं जिसको हम समशन कहते हैं, बिना भूख के खाना खाते हैं जिसे हम अध्यशन कहते हैं, तो इन सब से भी हमारा डाइजेशन खराब होता है और उसकी वजह से हमें कब्ज की शिकायत भी होती है। मैदे वाली चीजें और जंक फूड ज्यादा खाने से भी ये दिक्कत होती है।
जी, तो अनिता जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो है वो खानपान किस तरह का होना चाहिए?
हाँ, सुबह एक तो समय होना चाहिए, आपके नाश्ते का समय होना चाहिए, लंच का समय होना चाहिए, डिनर का समय होना चाहिए। सूर्य की किरणों के अनुसार हमारे डाइजेशन होता है। जैसे अभी भाई ने बोला कि डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो सुबह के समय हमको एक तो दूध नहीं लेना है, और अगर चाय भी पीते हैं तो आप ब्लैक टी पिए वो बेटर है, दूध वाली चाय नुकसान देती है। और सुबह फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक हैं, वो खाएं नाश्ते में, और वो सफिशिएंट है। अदरवाइज डेली आप पराठा रोटी खाएंगे तो वो ठीक नहीं है। भाई जी का मुझे लग रहा है कि अब रिटायर हो गए होंगे तो पराठा रोटी खाते होंगे, उसको ना खाएं। सुबह नाश्ते को जरूर इम्प्रूव कीजिए और वो 9 बजे तक मैक्सिमम आप कर लें। लंच का टाइम है आपका 12 से लेके मैक्सिमम 2 बजे तक, उस समय तक आप लंच कर लें। आप इस रूटीन को ही चेंज कर लेंगे तो आपका काफी डाइजेशन ठीक हो जाएगा। शाम को आप आफ्टर 40, मैं तो यही कहूंगी जितने भी श्रोता सुन रहे हैं कि 40 साल के बाद हमको शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, कोशिश ये करें तो आप बहुत अच्छे रहेंगे और कम से कम 100-125 साल आप जियेंगे। मैं देखूंगी आपको कि मेरे साथ आप भी 100-125 साल तक जिये। यही एक रूटीन है खाने
जी। और अब एक और श्रोता हमसे जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से, श्रीकांत जी। हेलो।
हेलो
जी श्रीकांत जी।
हाँ नमस्कार, मैं श्रीकांत जात्रा बोल रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र से।
जी श्रीकांत जी।
तो मुझे डिप्रेशन और एंग्जाइटी की तकलीफ है, और साथ में मतलब इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है मतलब
जी,
और वो पर्टिकुलरली नाइट में ज्यादा मतलब तकलीफ होती है उससे, मतलब एंग्जाइटी से। तो इसका कोई आयुर्वेदिक इलाज संभव है क्या उससे?
तनाव और चिंता पर कोई इलाज?
हाँ बिल्कुल श्रीकांत जी, 100% है। सबसे पहले तो आप ना थोड़ा सा, कितने बजे सोते हैं आप, ये आप रूटीन को चेंज करना है। अगर आप सोते हैं देर से तो आपको ये प्रॉब्लम होगी, और सोने के से 1 घंटा पहले मोबाइल छोड़ देना, टीवी छोड़ देना प्लीज। आप अपने आप को रिलैक्स करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें, उसी से हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर की आयुर्वेद में पूरी तरह से दवाई है, ठीक है, आप उसको खा सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है, थोड़ा सा आप ना प्राणायाम करें, श्वास, प्राणायाम का अर्थ होता है श्वासों पर ध्यान दें, और अपने श्वासों पे ध्यान देंगे सारी बीमारियां उसी से समाप्त हो जाएंगी। समय से सोएंगे आप, सोने से पहले आप 1 घंटा रिलैक्स फील करें, यानी कि मैं टीवी देखते देखते सो गए सॉरी मोबाइल देखते देखते सो गए, तो ऐसा नहीं करेंगे आप, तो आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। बीपी कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे तो बीपी पूरी तरह से क्योर हो जाएगा आपका। मैं ये शब्द बोल रही हूँ क्योर वाले, इसमें मुझे मतलब लोग ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, बट मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
और अब जयपुर से प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रमोद जी।
जी नमस्कार, मेरे 3 क्वेश्चन है कि आहार के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो क्या नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि उपवास का कितना महत्व है आयुर्वेद में, और तीसरा कैंसर में उपचार है क्या आयुर्वेद का।
अलका जी मैं आपसे चाहूंगी इस प्रश्न का जवाब दें, बहुत ही अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है।
जी नमस्कार प्रमोद जी, सबसे पहला आपका है कि आहार के साथ क्या ना ले। कुछ कुछ कॉम्बिनेशन आयुर्वेद में ऐसे बताए हैं जिनको हमें नहीं लेना चाहिए, जैसे नींबू के साथ कोई हमारी दूध वाली चीजें नहीं है, दूध के साथ हम नमकीन चीजें ना लें, कुछ जो नॉनवेज खाते हैं फिश के साथ एग ना लें, रात के टाइम दही ना खाएं, दही या दही से बनी चीजें, लस्सी छाछ ये रात के टाइम ना पिए। सुबह जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि आप सुबह के टाइम फल, और वो फल है नट्स हैं ड्राई फ्रूट हैं वो सब खा सकते हैं। कभी भी हमें फल वगैरह जो भी है वो खाने से पहले, मतलब मेन फूड से पहले खा लेना चाहिए, खाने के साथ साथ मत खाइए, खाने के इमिजिएटली बाद पानी मत पीजिए। तो ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे अगर आप अपनी डाइट में चेंजेस करेंगे तो इससे जरूर फायदा होगा।
अलका जी उन्होंने एक और जो सवाल पूछा था वो था कैंसर से संबंधित, कि क्या कैंसर का इलाज जो है वो आयुर्वेद में संभव है?
बिल्कुल संभव है आयुर्वेद में। अभी क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें, आपका किस स्टेज पे कैंसर है, कौन सा कैंसर है, और हम किस क्या उसके सिम्टम्स ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलना होगा लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हम जो भी आयुर्वेद या कोई दवाई देते हैं वो हमारे शरीर को हेल्प करती है, हीलिंग तो हमारा शरीर खुद ही करता है। तो इसलिए सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल सुधारिए, खाने में चीनी वगैरह का सेवन कम कर दीजिए, उपवास का तो बहुत ही महत्व है आजकल सब जगह, आप सुन रहे होंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग, लोग कहते हैं 6 बजे से बाद नहीं खाइए, तो वो एक इंटरमिटेंट फास्टिंग है, बॉडी को हील करने में हेल्प करता है। ऐसे ही जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो वो बॉडी को एक बूस्ट देता है अपने आप हील करने के लिए, हील करने के लिए प्रिपेयर करता है
जी।
ऐसे ही मेडिटेशन करते हैं तो वो स्ट्रेस कम करता है, वो भी एक हीलिंग में बहुत मदद करता है। और कोई भी दवाई जो है वो आप किसी डॉक्टर की मदद से, डॉक्टर से दिखा के वो ले सकते हैं
जी। अनिता जी, इस आयुर्वेद में आपका भी जो है काफी लंबा अनुभव रहा है, तो कैंसर से संबंधित हमने अभी अलका जी बता ही रही थी, तो उसमें आप अपने कुछ और विचार साझा करना चाहें हमारे श्रोताओं से।
यदि सपोज किसी को ऐसा महसूस होता है कि कैंसर है या टेस्ट में आता है, तो सबसे पहले गिलोय और गोधन यानी कि गोमूत्र, और एक जो होता है गेहूं का जवारा बोलते हैं, गेहूं को गमलों में लगा लें और 7 दिन के बाद उनको काटेंगे पत्तों को, उसका जूस पिएं। सबसे पहले ये शुरू कर दें, ट्रीटमेंट तो शुरू करें ही करें, लेकिन आज जिस दिन पता चले उस दिन आप इसको शुरू करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, ये हेल्प भी करेगा। और उसके साथ साथ मेन बात वही है कि श्वासों पर ध्यान दे दें, चूंकि श्वास जो लिखा हुआ है ना शास्त्रों में, प्राण ही परम औषधि है, आपकी प्राण जो है, प्राण वायु जो है वो आपकी औषधि का काम करेगी, और आयुर्वेद में दवाई है। आप ठीक से अपने भोजन को ठीक से लेंगे, नियमित रूप से लेंगे, समय से लेंगे, अच्छी आहार लेंगे तो आपको आराम मिलेगा।
और अब उत्तर प्रदेश से हमारे एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कमल दीक्षित जी। जी कमल जी, हेलो, इनसे लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और श्रोताओं, आप जो है दोबारा से प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अलका कपूर और विशेषज्ञ अनिता कौशिक जी, जो आपके सवालों का जवाब दे रही हैं। नंबर है 0112371717, 0112331 4444। तो आप फोन करते रहिए और अपने सवालों के जवाब हम सब से लेते रहिए। और अब दिल्ली से ज्योत्सनी उपेजा जी जुड़ गई हैं। हेलो,
हाँ जी मैं सुन रहा हूँ
जी। जोशन जी बताइए।
कपूर कौशिक जी को नारी होने का नाज तो हो गई और साथ में विशेषज्ञता आपके पास है। सवाल ये है कि नवरात्रों की शुभकामनाएं
जी आपको भी, आपको भी।
आज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जमाना है उसमें आयुर्वेद को खास करके हिंदुस्तानी में पेशेंस तो होता नहीं है और वो अंग्रेजी को ये अडॉप्ट करते हैं, तो इस पर थोड़ा बताने की कृपा करें।
ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी में पेशेंस नहीं होती, सबसे ज्यादा पेशेंस हम लोगों में होती है। पहले तो ये प्राउड फील कीजिए आप कि भारत में, आप भारत की भूमि में आपने जन्म लिया है, और ये एक हमारा हो गया है, एक नेचर ऐसा हो गया कि एलोपैथिक से लगता है कि जल्दी से आराम आ जाए, लेकिन आयुर्वेद में भी इतना है कि आपको इमीडिएट इफेक्ट होता है, ये फैक्ट है। और आपकी जो किचन है ना, इसमें सारी दवाइयां हैं आपके पास, आप जो खाते हैं उसको सिस्टमेटिकली करें खाएंगे तो आपके पास दवाई के रूप में वो काम करेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला था कि सैलेड पहले खाएं, फ्रूट्स पहले खाएं, उसके बाद भोजन खाएं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा सिस्टम हमको चेंज कर लेना है, क्योंकि हम बाहर वाली सभ्यता को तो एडॉप्ट कर रहे हैं और अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। अपनी संस्कृति को ना भूलें तो हम बिल्कुल ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। भोजन का समय बनाएं, सुबह 9 बजे तक नाश्ता कर लें, दोपहर को 12 से लेकर 2 बजे तक लंच कर लें, और शाम को 40 के बाद तो जो 40 ईयर्स के हो जाते हैं ना, तो उसके बाद तो 6 बजे के बाद ना खाएं, लेकिन और कॉमन लोग बीच में मैक्सिमम 8 बजे तक, रात्रि को 8 बजे तक हमको भोजन कर लेना चाहिए। उसके बाद कम से कम 1-2 घंटा हम जगे रहेंगे तो भोजन का सिस्टम अच्छा रहेगा। पानी पीने का नियम बनाएं, सुबह मोशन से पहले पानी पिएं, उकड़ू बैठ के पानी पिएं। उकड़ू मीन्स जैसे हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। भोजन के एकदम बाद पानी ना पिएं, उसमें थोड़ा गैप दें, तो ये सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे और हम हिंदुस्तान के बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप ऐसा मत सोचिए।
और अब मध्य प्रदेश से राशिद अहमद खान हमसे जुड़ गए हैं। जी राशिद जी।
जी मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से राशिद अहमद खान। एक छोटा सा निवेदन हमारा
जी,
हमारे बुजुर्गों से हमने ये सुना है कि कम खाना, गम खाना और नम जाना, इससे बहुत सी चीजों से आदमी बच जाता है, समस्याओं से बच जाता है, तनाव से बच जाता है
जी।
इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप, आपका आयुर्वेद क्या कहता है?
बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर जिस तरह के दिनचर्या हम सब लोग जी रहे हैं उसमें तनाव का होना तो संभव है।
जी जी राशिद जी नमस्कार। आपने कहा कम खाना, नम खाना,
गम खाना।
कम खाना, यस, जब तक हमारा पहले का खाया हुआ भोजन डाइजेस्ट नहीं हो जाए तब तक नहीं खाना है। तो इसका यही मतलब है कि जब हमें भूख लगे तभी खाना है। अभी क्या हो गया, हमारी आदत हो गई है कि अच्छा बाहर जा रहे हैं, अच्छे अच्छे पकवान हैं, तो भूख है या नहीं थोड़ा टेस्ट ही कर लेते हैं। किसी शादी में गए, किसी पार्टी में गए तो भूख नहीं है तभी भी हम खा रहे हैं। तो वो हमारा बॉडी है, कोई डस्टबिन नहीं है कि हम कुछ भी डाल रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा माइंडफुली खाना है। तो और जब भूख लगे, भूख लगती है इसका मतलब बॉडी हमें कह रही है, बताती है हमें कि हमें ये खाना है, हमारी बॉडी को ये जरूरत है, तभी हम खाएं। तो अध्यसन ना करें और चिंता नहीं करें। चिंता तो चिता समान, बहुत पुरानी कहावत है, क्योंकि जितना भी ब्रेन का कंट्रोल है, जो हम कहते हैं ना, जो भी साइंस भी पढ़ रहे हैं आजकल, मॉडर्न साइंस भी लोग पढ़ते हैं, तो जितना कंट्रोल है बॉडी फंक्शंस का वो सब ब्रेन से, नर्व्स के थ्रू होता है। अगर वहीं पे टेंशन है तो हमारे पास सिग्नल्स गलत आते हैं। तो इसलिए हमारा डाइजेशन, हमारा जो भी वल्नरेबल पार्ट है उसमें दिक्कत आती है।
नहीं, वैसे भी डॉक्टर साहब होता क्या है कि अरे चलो थोड़ी सब्जी बची है इसको भी खा लेते हैं। जैसे अभी उन्होंने बोला भाई जी ने कि कम खाना, कम खाने का अर्थ यही होता है जितनी भूख है उससे भी थोड़ा कम खाएं हम। यदि चार रोटी खा सकते हैं तो तीन रोटी खाएं, और थोड़ी सब्जी बची हुई है सुबह खाएंगे, अभी खा लेते हैं, चलिए अभी भूख नहीं लग रही, टाइम तो हो रहा है, खा लेते हैं, ये सब चीजों का ध्यान रखें
जी। अनिता जी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को अगर आपने 8:30 बजे तक खाना खिलाकर फ्री कर दिया है, और लेकिन बच्चे अगर जग रहे हैं तो अमूमन 12 या 1 बजे उनको भूख लगती ही लगती है, तो उनको उस समय खाना देना क्या सही है?
100% पॉइजन, 100% पॉइजन है वो। और 12-1 बजे का तो कोई तुक ही नहीं है, मतलब ही नहीं है हमको, मतलब रात में खाने का बनता ही नहीं है। हम जगे हुए हैं सपोज, पहली बात तो लेट नाइट पढ़ना नहीं चाहिए, सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए, और वो थोड़ा अच्छा भी रहता है। बजाय 12 बजे के 11 बजे आप बिस्तर पे जाएं, बच्चे भी जाएं, नो प्रॉब्लम, आप जो बनना चाहेंगे वो बनेंगे, जो एजुकेशन आप लेना चाहेंगे लेंगे, नो प्रॉब्लम, सुबह उठ के पढ़ लीजिए उसमें। लेकिन रात में कोशिश करें, बहुत मजबूरी भी हो तो भी कोशिश करें कि पानी पीकर सो जाएं, बड़े हों या बच्चे हों, ये बहुत जरूरी है
जी। और अब बिहार दरभंगा से मोहन पासवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मोहन जी।
जी एक अच्छे प्रणाम मैडम
जी। प्रणाम आपको भी
जी। मैडम ये जानना चाहता हूँ कि घर में उपयोग करने वाले जितने भी वस्तु हैं सब आयुर्वेद हैं, तो फिर लोगों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाने के लिए अलग से आयुर्वेद दवा के रूप में क्यों लेना पड़ता है? कैसे ठीक होगा और कहाँ भूल चूक ठीक करना होगा भोजन में मैडम?
देखिए सब चीज आयुर्वेद है यहाँ पे, लेकिन उसको किस तरीके से लेना है वो इम्पोर्टेंट है। अभी आप अगर सुबह अपना एक खाने का टाइम बना लें, एक दिनचर्या रात्रिचर्या का सब वर्णन आयुर्वेद में, उसके हिसाब से फॉलो कर लें, मतलब रात को 10 बजे से पहले सो जाएं, 8 घंटे की नींद ले, सुबह ऐसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए लिखा है, मतलब सूर्योदय से भी लगभग 48 मिनट पहले आपको उठना चाहिए। उसके बाद पूरा एक वो है कि अपने शरीर का अभ्यंग करें, पानी पिए, कुछ वर्जिश करें, कुछ एक्सरसाइज करें। उसके बाद आप जो नाश्ते में लेना चाहिए, आज जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि 8 या 9 बजे तक मैक्सिमम आप नाश्ता कर लें, और लंच का सबसे अच्छा टाइम होता है 12 से 2 बजे तक के बीच में, क्योंकि उस टाइम हमारा पेट काफी बड़ा होता है और डाइजेशन अच्छा हो जाता है। और रात्रि में भी ऐसा है, सोने और खाने के बीच में आपका कम से कम 3 घंटे का गैप होना है। क्या हम ऐसा सब करते हैं फॉलो? अगर हम करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो हमारे लिए जो भी हम भोजन करते हैं वो औषधि का ही काम करता है, तो अलग से औषधि नहीं लेनी पड़ती।
नहीं, उसके अलावा जैसे आपने बोला भैया जी कि सारी औषधि हमारे किचन में है, लेकिन उसमें हम करते क्या है कि कुकर में डाला एक चमचा घी, वो भी मतलब जो देसी से अलावा जो भी होता है रिफाइंड वगैरह वगैरह, और उसमें डाला हमने सब कुछ मसाला, और उसको हमने पकाते रहे तब तक घी नहीं छोड़ेगा, तेल नहीं छोड़ेगा, तो हमको तो मजा ही नहीं आता है। ये पॉइजन का काम करता है। आपको घी की मात्रा कम रखनी है और उसको बहुत पकाना नहीं है मसाले को। प्याज भी डाली आपने, जीरा भी डाला, जस्ट डाला और बस एक बार घुमाया, और उसके बाद सब्जी डाल दीजिए तो नुकसान नहीं देगा। पराठा खाना है जी हमको, पराठा मत खाइए, रोटी के अंदर घी डाल के ऊपर से मक्खन रख के खा लिया, आप बीमार नहीं होंगे। तो जो ये मैं मेरे जैसी माताएं हैं ना, तो हमको ज्यादा ध्यान देनी, इसलिए मैं अपने लिए कह रही, नहीं तो आपके घर में लड़ाई हो सकती है, तो माताओं को ज्यादा ध्यान देना है कि हमको खाना किस तरह से बनाना
जी। अनिता जी, आपने घी की बात करी तो हम आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहेंगे कि किचन में हम लोग कौन सा तेल इस्तेमाल करें जिससे कि स्वास्थ्य बेहतर रहे।
सबसे बेटर है सरसों का तेल और तिल का तेल।
तिल का तेल
सबसे बेटर तो तिल है, अगर मैं एक उससे मतलब तेल जो है तिल का ही होता है, तिल और सरसों का तेल बेस्ट है। कोई किसी को हाई ब्लड प्रेशर है कुछ है कि रिफाइंड खाओ, नथिंग एल्स, आप तिल का तेल और सरसों का तेल ही खाए
जी। और अब उत्तर प्रदेश से राममिलन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। राम जी,
हरी मिली, आप सभी लोगों को नमस्कार, डॉक्टर साहिबाओं महोदयों को सबको नमस्कार, आपको भी
नमस्कार।
और मैं दृष्टिबाधित ब्लाइंड यानी दिव्यांग बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बांदा से
जी।
जैसे मिर्गी वगैरह के दौरे या झटके किसी को आते हैं, मेरा एक भांजा है उसको ऐसा कुछ होता है, तो आपके आयुर्वेद में कोई ऐसा उपचार हो या कोई हॉस्पिटल भैया जिसमें इलाज, क्योंकि उन्होंने बहुत इलाज कराया मैडम जी लेकिन उसका उपचार हुआ नहीं, तो यदि आपके पास ऐसा कुछ उपाय हो तो बताइए इसके बारे में।
हाँ जी बिल्कुल, एक तो इसमें प्राणायाम होता है, भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम है जो मिर्गी के दौरे के लिए ठीक रहता है, और इसमें मेधावटी काफी काम करती है, मेधावटी एंड गिलोय दोनों चीजें दें उनको, और प्राणायाम होता है भ्रामरी और उद्गीत, ये प्राणायाम कराएं। कहीं आपके आसपास में योग की क्लास होती होगी पार्क में, वहां जाकर प्रॉपर अच्छे से सीखें, गुरु के संरक्षण में सीखें। कई बार हम टीवी में देखकर ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो गुरु के संरक्षण में आप देखेंगे तो ये ठीक हो जाएगी समस्या, बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
और एक और शिमला से हमारे श्रोता जुड़ गए हैं राकेश जी। जी राकेश जी,
जी नमस्कार।
नमस्कार,
सबसे पहले तो आपको और आकाशवाणी पूरी टीम को और डॉक्टर साहब को भी मेरा आयुर्वेद नवरात्र की शुभकामनाएं।
आपको भी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मेरा एक प्रश्न है, जैसे अगर एसटीडी होती है जब हम खाने की बात, तो हमें आयुर्वेद का किस तरह से किस क्या इस्तेमाल करना चाहिए, जब एसटीडी होती है क्या क्या हमें करना चाहिए एसटीडी को रोकने की आयुर्वेद
एसिडिटी का मालूम है आपको क्या होता है कि हमारा जो है ना पित्त ज्यादा बन जाता है, तो उसको सीधा सा एक साइंस कहता है कि पानी का सेवन ज्यादा करें आप क्या करें बहन कि पानी जो है, जैसे आपने सुबह नाश्ता किया सपोज 9 बजे, आप 10 बजे पानी पिए एक गिलास, फिर 10:30 बजे पानी पिए एक गिलास, ऐसे करते करते आप 3-4 बार पानी पी लें, फिर आप दोपहर का भोजन करेंगे उसके फिर 1 घंटे बाद पानी पी लें, आपकी ये एसिडिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पानी के सिस्टम को आप थोड़ा इम्प्रूव करें अपने, और एक गिलास को धीरे धीरे एक एक सिप करके पिए, मुंह में एक घूंट भरे उसको पूरा घुमाएं और फिर उसको इनटेक करें, उसको पिए मतलब सटकें उसको, तो आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा, अपने दिनचर्या को आप बेहतर करेंगे तो पक्का यकीनन आप आयुर्वेद का जो फायदा है वो उठा सकते हैं। और ये कहा भी गया है कि नास्ति मूलम अनौषधम, आयुर्वेद में हर चीज को औषधि माना गया है और हर चीज का उपयोग स्वास्थ्य के लिए ही किया जाता है। तो आप अगर हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो जो भी सारी चीजें आज हमारे विशेषज्ञों ने हमसे साझा की हैं वो अवश्य अपनाएं। और हमारे मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का जो है वो जवाब दिया। डॉक्टर अलका कपूर और विशेषज्ञ अनिता कौशिक जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद
जी। और इसके साथ ही मुझे फरहत नाज को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।